बहुत ही सुंदर भजन आप सुन रहे थे प्रिया जी से। चलिए थोड़ी सी सत्यार प्रकाश की चर्चा करेंगे। यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रमूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्णवः अग्निं यश्चक्रास्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य वातः प्राणापानो चक्षुरङ्गिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानी तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी अंग्रेजी में लाइट ऑफ ट्रुथ ट्रांसलेशन है, महर्षि दयानंद जी का लिखा हुआ, उसकी सातवें चैप्टर की हम चर्चा कर रहे हैं। सातवां समुल्लास ईश्वर के अलग अलग आयामों पर चर्चा है इसमें। इट्स अबाउट द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द गॉड। तो आज उसकी बारहवां भाग है। पिछले बार हमने इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, डज गॉड इनकार्नेट और नॉट, क्या ईश्वर अवतार लेता है या नहीं, इस पर चर्चा कर रहे थे। और ईश्वर अवतार लेता नहीं है, अवतार का अर्थ होता है टू डिसेंड, ऊपर से नीचे उतरना। उन्हीं लोगों के लिए ईश्वर अवतार लेता है जिनके लिए ईश्वर एक देशी है, इज अ लिमिटेड थिंग, एक खास जगह पर रहता है, जो सर्वव्यापी होगा, जो हर जगह कण कण में जर्रे जर्रे में होगा, वो कहां से उतरेगा और किधर उतरेगा। वो अजय है, नित्य है, इसके बारे में काफी चर्चा हमने पिछले बार की थी। थोड़ा सा दो तीन मिनट में रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। जैसे कुछ लोग तर्क देते हैं पुराणों की कहानियों से कि ईश्वर को इसीलिए अवतार लेना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे राक्षस लोग उत्पात करते हैं, उनको मारने के लिए ईश्वर को आना जरूरी होता है। तो समाधान स्वामी जी देते हैं, क्या सूरज चांद को बनाने से ज्यादा मुश्किल काम है रावण और कंस को मारना? इतने बड़े संसार को बनाने, पालने और विनाश करने से क्या ज्यादा बड़ा काम होता है ये छोटे मोटे कंस रावण जैसे आजकल के गुंडे भी इससे ज्यादा पावरफुल और ज्यादा मिस्चीवियस होते हैं, ज्यादा डेंजरियस होते हैं आजकल के जो माफिया सरदार होते हैं। रावण कंस तो उनके सामने कहीं टिकेंगे भी नहीं, उनका पाप इतना ज्यादा बड़ा नहीं है जितना बोको हराम नाइजीरिया में करता है व आईसिस सीरिया में करता है। और सिर्फ आज नहीं, हिटलर से लेकर के स्टालिन से लेकर के इस सिर्फ पिछले हजार साल की अगर हिस्ट्री देखें, इतने खतरनाक खतरनाक लोग पैदा हुए हैं जो कंस रावण तो उनके एक एक सोल्जर के बराबर भी नहीं बनेंगे, इतने खतरनाक इतने बदमाश है। ये ऐसे छोटे मोटे राक्षसों को मारने के लिए ईश्वर जो सारा संसार को बनाता है, पालता है, बिगाड़ता है, उसको इतने कष्ट उठाना पड़ता है, पैदा होना पड़ता है, कहीं जेल में पैदा होता है, कहीं घर में पैदा होता है, इतने कष्ट उठाना पड़ता है। जो ईश्वर, इसका मतलब है कि वही लोग ईश्वर के अवतार को मानते हैं जो ये मानते हैं कि ईश्वर भी कमजोर तत्व है, वो सर्वव्यापक नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वज्ञ नहीं है। वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। अगर किसी को मारना होता है, ईश्वर उसके अंदर भी है, हजारों तरह की बीमारियां पैदा कर सकता है, हजारों तरह के प्राकृतिक विपदाएं पैदा कर सकता है। एक एक सुनामी में 2-4 लाख लोग मर जाते हैं, तूफानों में लाखों लोग मर जाते हैं, तो मथुरा में वैसे ही बहुत बड़ा तूफान ले आता, वैसे ही अपने आप मर जाते, पैदा लेने की क्या जरूरत थी। और जो लोग ईश्वर की प्रकृति को नहीं समझते हैं, ईश्वर का काम कितना विशाल है, कितना चमत्कारी है, ज्यादातर वो लोग जो बाबाओं के चमत्कार को चमत्कार कह करके अभिभूत होते हैं, वो अवतार से भी अभिभूत होते हैं। जब वो भूल जाते हैं तुम्हारा अपना शरीर भी अपने आप में एक मिरेकल है, किसी गुरु या बाबा ने नहीं बनाया, ईश्वर का बनाया हुआ है। उस शरीर का हर अंग, हर प्रत्यंग, एवरी सिस्टम, द पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, जो नर्व स्ट्रक्चर है, वो इतना यूनिक है, इतना मिस्मराइजिंग है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस संसार का हर तत्व, ये पहाड़ों को देखिए, नदियों को देखिए, फूलों को देखिए, अलग अलग रस वाले फलों को देखिए, अलग अलग रंग वाले फूलों को देखिए, ये पहाड़ों को, जंगलों को, अलग अलग तरह के पशु पक्षियों को देखिए, इंसानों को देखिए, सूरज चांदों को देखिए, समझ में आएगा ईश्वर कितना 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 महान है, कितनी शक्तिमान है। तो उसका हर एक छोटी छोटी चीजें भी आपको मिस्मराइज करेगा अगर आप सचमुच ईश्वर के कृतित्व को समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं ईश्वर का हर एक काम अपने आप में यूनिक है, नॉन इक्वल है, इट इज ना भूतो ना भविष्यति, उसके जैसा कोई ना हो सकता है, ना हुआ है। रीजनिंग ऑल्सो डजंट प्रूव दिस टाइप ऑफ थ्योरी। जैसे कि कुछ लोग तर्क देते हैं कहानियों के द्वारा, इन्फिनिट स्पेस सेंटर्ड द ओम ऑफ अर समवन क्लोज्ड इट इन हिज फिस्ट, मुट्ठी में ही सारा आकाश को उन्होंने समा लिया, वो सारा गारा संसार उनको पेट में निगल लिया, जैसे कि हम विश्व रूप दर्शन वगैरह को पढ़ के बिल्कुल चमत्कृत होते रहते हैं। ये कैसे सच हो सकता है? फॉर स्पेस बिंग इन्फिनिट एंड ओमनी प्रेजेंट कैन नाइदर गो इन नॉर कम आउट। जब आप स्पेस की बात करते हैं, आकाश की बात करते हैं, तो आकाश तो अनंत है, सर्वव्यापी है, किसी सर्वव्यापी को निगलने के लिए तो कोई जगह बचना चाहिए ना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तभी तो इसको आप निगलना कहते हैं। जब आप कहते हैं कि आकाश ही सर्वव्यापी है, तो जो निकलेगा वो कहां खड़ा होगा? जिसका पेट होगा वो तो उस आकाश में ही होगा ना। छोटी छोटी बातों को कभी हम ध्यान नहीं देते, तो कैसे कोई अंदर जाएगा, कोई से कोई बाहर आएगा जो ऑलरेडी वहां पर है? सिमिलरली गॉड बिंग इन्फिनिट एंड ऑल फॉरबिडिंग कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड ऑफ हिम That he goes in or comes out. इसी तरह ईश्वर सर्वव्यापी है, मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, आपके अंदर है, आपके बाहर है, वो हर कण में है, हर जर्रे में है, तो फिर कैसे किसी खास जगह पर गया? अगर किसी के अंदर गया इसका मतलब पहले नहीं था, अगर वो बाहर पैदा हुआ, गर्भ से निकला, इसका मतलब उसके अंदर से खाली हो गया ईश्वर। दोनों सिद्धांत थोड़े साथ साथ चलते हैं। कमिंग एंड गोइंग कैन बी पॉसिबल इफ इट बी बिलीव्ड दैट देयर आर प्लेसेस वेयर ही इज नॉट। ये तभी संभव है जब ये मान लो कि ईश्वर वहां नहीं था, तभी अंदर घुसा, वहां से निकला। देयर वॉज नॉट गॉड ऑलरेडी प्रेजेंट इन द वोम। ईश्वर जब सर्वव्यापक है, वो उस गर्भ में भी है जहां आप उसको देख नहीं पाते हो। एंड वॉज नॉट ही ऑलरेडी प्रेजेंट आउटसाइड, वो बाहर भी ऑलरेडी है। ही सेड टू हैव गॉन इन टू एंड कम आउट ऑफ। तो फिर कैसे हम कहें कि गर्भ में ईश्वर प्रवेश किया और गर्भ से बाहर निकला। हु बट मैन डिवॉइड ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, हमारे पूर्वज जब हमारे देश में हजारों सालों तक अनपढ़पन निरक्षरता बहुत व्यापी रही, इलिटरेसी हजारों सालों तक रही, करीब करीब 90-95% लोग इलिटरेट रहे। इवन देश आजाद होने तक भी हमारी लिटरेसी की संख्या 10-15% से ज्यादा नहीं थी। तो तब कुछ लोगों को यह मनाना मनवाना आसान था, पर जब आप धीरे धीरे इंटेलेक्ट आप पढ़ क्लिक करके अपने इंटेलिजेंट को बढ़ाते हैं, तो कुछ चीजें अपने आप को उसमें प्रयोग करने की जरूरत है। कैन बिलीव इन एंड से सच थिंग्स अबाउट गॉड। सिर्फ वही लोग जो बुद्धिहीन है या बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, ऐसा नहीं कि बुद्धिहीन लोग होते हैं ज्यादातर, मोस्ट ऑफ पीपल आर इंटेलिजेंट एजुकेटेड। आजकल हो सकता है उनके ग्रैंड पेरेंट्स ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इलिटरेट रहे हो, पर आज के वर्ग तो इलिटरेट नहीं है, तो एजुकेटेड इंटेलिजेंट है। वो क्यों मानते हैं? क्योंकि दे डोंट यूज देयर इंटेलेक्ट इन दैट स्पेसिफिक एरिया। वो अपने प्रोफेशन में इंटेलेक्ट यूज करते हैं, वो अपने घर में इंटेलेक्ट यूज करते हैं, वो अपने क्लासरूम में इंटेलेक्ट यूज करते हैं, वो दुनिया में हर जगह इंटेलेक्ट यूज करते हैं सिवाय रिलीजियन को। Therefore, it should be understood that Christ etc. cannot be incarnations of God. सिर्फ इतना नहीं, हमने सिर्फ हमारे यहां अवतारों की नहीं, हमने दूसरे धर्मों को अपने बराबर करने के लिए यह भी घोषित कर दिया कि क्राइस्ट भी अवतार है, मोहम्मद भी अवतार है, बुद्ध भी अवतार है। वो बुद्ध बेचारा जो ईश्वर को खुद मानता ही नहीं था, उसको भी हमने अवतार बना दिया ईश्वर का। ये सारे बौद्ध कितनी, मुझे तो कभी कभी बड़ा 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 विडंबना लगती है कि जो सो कॉल्ड बौद्ध लोग है बुद्ध की मूर्ति पूजते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है जो बुद्ध उस सिस्टम के खिलाफ लड़ा, आज वो खुद उसी के जगह ले चुका है, पूजा जाता है। इस महापुरुष है, वो ह्यूमन बींग है। दे आर ऑल मैन वोमेन बिकॉज दे हैड ह्यूमन क्वालिटीज सच एज अटैचमेंट अवर्सन हंगर थर्स्ट फियर ग्रीप बर्थ एंड डेथ एटसेट्रा। वो हमारे आपके तरह इंसान है जिन्होंने अपनी परिश्रम से, अपनी त्याग से, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से अपने आप को इतना ऊंचा किया जो हमारे लिए आदर्श बन जाते हैं। हमारी समस्या है कि हम बुद्ध जैसा बन नहीं सकते, हम कृष्ण जैसा बन नहीं सकते। कृष्ण के जीवन को समझना है तो व्यास के महाभारत पढ़ो, आपके एक एक रोया खड़ा हो जाएगा। मैं भागवत की बात नहीं कर रहा हूं जहां आप लीला पढ़ के आप रोमांटिक होते जाएंगे, मैं महाभारत की बात कर रहा हूं जिसको पढ़ने के बाद आपके एक एक रोए खड़े होते जाएंगे। कृष्ण की जो 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 तपस्या है, जो साधना है, जो कष्ट है, जो सेक्रीफाइस है, जो जीवन में जो जो उन्होंने ग्रेटनेस को, जिस महिमा को उन्होंने प्राप्त किया है, आप मिसमराइज होते जाएंगे। वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, राम के जीवन को पढ़िए। हमारी समस्या है कि हम चरित्र को आचरण में लाना नहीं चाहते। हम हर उस महापुरुष को भगवान बनाने के पीछे तुले पड़े हैं क्योंकि हमें उनके तरह नहीं बनना है और उनके नाम पर धंधा जरूर करना है, लोगों को समझाना है, खुद भी सारा उठपटांग काम कर करना है। इसीलिए हम हर उस महापुरुष को, हर उस दिव्यात्मा को, वो हर उस महात्मा को ईश्वर के ढक्कन में ढक करके पूजने लगते हैं, जिससे लाखों लोगों का रोजगार बना रहे, लाखों बेईमान ईमानदार की तरह चलते रहे। हम कितनी भी बेईमानी करते रहे, राम के भक्त बने रहते हैं। और क्यों? क्योंकि मैं बेचारा आम आदमी, राम भगवान था इसीलिए उसने ये त्याग किया, कृष्ण भगवान ईश्वर था इसीलिए उसने त्याग किया। मैं कहां कर पाऊं, मैं बस पूज पाऊंगा, मतलब चरणामृत तो रोज लूंगा और रोज मंदिर के बाहर जाकर के बेईमानी करूंगा, चोरी करूंगा, झूठ बोलूंगा, गलत करूंगा। और उसका परिणाम यही हुआ सज्जनों देवियों, अवतारवाद का जो रिजल्ट है समाज में आप देखेंगे कि पाप को बढ़ावा मिलता है कि आप पाप करो और उसका एक निराकरण उपाय है, आप बुराई करो, जीसस के नाम पर कन्फेस करो, पाप मुक्त हो गए। आप बुराई करो, गंगा में डुबकी लगाओ, पाप मुक्त हो गए। आप बुरा काम करो, अमुक की पूजा करो, पाप से मुक्ति हो गई। तो एक तरह से पाप को बढ़ाने का हम लाइसेंस बांटते हैं धर्माचार्य और पंडित ज्ञानी लोग कि तुम्हें पाप करने में कोई गुरेज नहीं है, तुम भी भगवान का, तुम भी मोक्ष पा सकते हो, जितना पाप करना है करो, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है, बस ये है कि हमारे पास आना जरूर, पूजा जरूर करना, दक्षिणा जरूर चढ़ाना, हमारे शोक जिसको मैं गॉड मानता हूं उसकी डिवोटी बनना, तो देखना तेरे सारे पाप माफ हो जाएंगे। जितनी बेईमानी करना है करो, जितनी हत्याएं करनी है करो, जितनी गड़बड़ियां करनी ही करो। तो हुआ क्या, जो देश जितना ज्यादा रिलीजियस वो देश उतना ज्यादा करप्ट मिलता है। ये क्यों होता है कि एक रिलीजियस सोसाइटी और करप्ट सोसाइटी अलग क्यों नहीं होता है? तो जब रिलीजियस होता है तो व्यक्ति तो शुद्ध होना चाहिए ना, पवित्र होना चाहिए ना, उसका आचरण तो शुद्ध होना चाहिए ना, क्यों नहीं होता है? क्यों राम के भक्त अपने घर में मां बाप की सेवा नहीं करते, अपने भाई बहनों का सम्मान नहीं करते? क्यों तब भी अपने आप को राम का भक्त बोलते घूमते फिरते हैं? क्यों कृष्ण के भक्त देश के लिए, समाज के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करता? कृष्ण तो समाज की रक्षा के लिए अपने बच्चों तक भी मरवा डाला। आखिर में जब महाभारत की लड़ाई के बाद कृष्ण जब द्वारिका वापस जाते हैं, देखते हैं उनके बच्चे, उनके भतीजे, उनके पोते घमंड में चूर हैं कि उनके पिताजी और उनके ताऊ बलराम कृष्ण वगैरह इतने प्रसिद्ध हो चुके थे, इतने महान हो चुके थे, जैसे आजकल आप देखते हैं बहुत सारे रिच लोगों के बिगड़े हुए बच्चे या नेताओं के बिगड़े हुए बच्चे होते हैं। तो कृष्ण ने देखा ये तो गड़बड़ है, ये मेरे बाप तो पता नहीं, मेरे जीते जी इतने घमंडी हो चुके हैं, इतना उत्पात मचा रहे हैं, बाद में क्या करेंगे? तो द्वारिका में ही उन्होंने बर्बादी के बीज बोए। आखिर में हताश निराश होकर के जंगल में पड़े हैं और शिकारी के द्वारा मारे जाते हैं। अपने जीवन भर में हजारों राजाओं को, राक्षसों को, राक्षस मतलब दुष्ट लोगों को मरवाया, पर खुद कहीं राज्य के राजा नहीं बने। आखिर में अपने रहने के लिए भी जगह चुना तो एक टापू बना के अलग से शहर बनाया, उसमें भी वो खुद राजा नहीं बने। उन्होंने गणराज्य स्थापित किया, गणराज्य मतलब डेमोक्रेसी, जहां बहुत सारे लोग शासन करेंगे। उसमें जैसे आपके कंपनी में बहुत से ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसी को गणराज्य कहते हैं। कृष्ण वाज वन ऑफ देम। द्वारिका गणराज्य था, उसका कोई अकेला राजा नहीं था। कंस से लेकर जरासंध से लेकर हजारों दुष्ट राजाओं को मरवाया, खुद कहीं नहीं राजा बने। वो हमारे अंदर वो नहीं आता है, कृष्ण कृष्ण के भक्त तो राधे राधे करते दूसरे को शिष्याओं के पीछे पड़े रहते हैं, वो सीख नहीं पाते हैं कि दूसरों के लिए कैसे त्याग किया जाए। इसीलिए कि हमें महापुरुषों के चरित्र को नहीं आचरण में लाना है, इसीलिए हम उनको ईश्वर बना के एक साइड में कर देते हैं। बुद्ध का जीवन कितना पवित्र है, कितना शुद्ध है, वो खुद राजपाट छोड़ देता है, अहिंसा के बड़ा भक्त है, और सो कल्ड सारे के सारे बौद्ध स्वर से लेकर के कुत्ते तक सब खा जाते हैं, पर स्टिल दे आर कॉल्ड देमसेल्फ बौद्ध। सांप बिल्ली तक खा जाते हैं और बुद्ध की मूर्ति पूजते हैं तो भी अहिंसा की लेक्चर झाड़ते हैं बुद्ध के नाम पर। तो जो महात्मा है उनके चरित्र अगर जीवन में उतर जाए तो हम भी छोटे मोटे महान बन जाए। ये अवतार के कारण हम महात्माओं के ऊपर जुल्म भी करते हैं, उनके कष्टों को, उनकी यातनाओं को, उनके तपस्याओं को हम इग्नोर करते हैं इन द नेम ऑफ गॉड, कि भाई वो ईश्वर थे इसीलिए वो सह पाए, मैं तो नहीं सह पाऊंगा। क्राइस्ट भी इसी तरह एक महान योगी या तपस्वी था। आज तो ये क्राइस्ट को मानने वाले भगवान को ही ना, इन द नेम ऑफ जीसस में सारी गाड़ी चलती है, गॉड तो सिर्फ नाम को होता है, कहीं लोग ना बिगड़ जाए। इसीलिए ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, उसको किसी को मारने के लिए जन्म लेने की जरूरत ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। किसी को बचाने के लिए जन्म लेने की जरूरत नहीं, वो कैसे भी बचा सकता है। भक्तों को आशीर्वाद लेने के लिए जन्म लेने की जरूरत नहीं, भक्त अच्छे काम करेंगे, उसने ऐसा सुंदर सिस्टम बना रखा है कि उनका फल तो उनको मिलना ही मिलना है। जैसे ही आपका हृदय पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, आचरण शुद्ध होंगे, आपको शुद्ध फल मिलने लगेंगे, अपने आप मिलेंगे, उसमें कोई ईश्वर की अलग से कृपा की जरूरत नहीं है। ईश्वर आपके लिए फिर पैदा होकर के अपने आप को तड़पाने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, डज गॉड फॉरगिव द सिंस ऑफ हिज डिवोटीज आर नॉट, क्या ईश्वर अपने भक्तों की पापों की रक्षा माफ करता है कि नहीं करता है। स्वामी जी के उत्तर को समझने से पहले दो तीन चीजें समझ लीजिएगा। शब्दावली देखिए, हिज डिवोटीज, मान लीजिए मैं जो मेरे डिवोटीज हैं उन्हीं का फॉरगिव करूंगा जी, अगर मेरे पड़ोसी के डिवोटी हैं उनको तो नर्क भेजूंगा जितना मर्जी सजाऊंगा। ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि आज भी तो आप यही देखते हैं, इफ यू बिलीव इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ ह्यूमन बींग एज गॉड यू विल गो टू द हेवन, नहीं तो आपको हेल जाना होगा। अब तो जबरदस्ती भी है, नहीं माना तो मरवा मारो काटो काफिरों को। क्या ईश्वर सिर्फ अपने भक्तों की, एक तो दो क्वेश्चन है इसमें, क्या ईश्वर पाप को माफ करता है, नंबर वन। नंबर टू, पाप की माफ अगर करता है तो क्या अपने भक्तों के पापों को ही माफ करता है या सबके करता है, क्योंकि आज चारों तरफ यही चल रहा है, हर कोई माफी करने के लिए तैयार बैठा है, सब किसी को देखो तैयार कर, अपने पर्सनल खुंदक जिस पर है उसी को कोई नहीं माफ कर सकता है? धर्म के नाम पर सब माफ करने को तैयार बैठे हैं। अगर दुनिया को लूटते हैं तो लूटने दो, अगर मेरे धर्म के अनुयायी बने तो तेरे सारे पाप माफ, पर मेरे घर के बैकयार्ड में एक फेंस का अगर लकड़ी तोड़ा तो तब नहीं छोड़ने वाला हूं तुरे को, तब भगवान क्या करेगा, छोड़ो भगवान को, मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। उस पैस्टर के घर के फेंस का एक लकड़ी कोई तोड़ दे वो कोर्ट में जाकर के हाजिर देगा, तब नहीं फॉरगिव करता है वो।
दूसरों के घर में कुछ करो, मेरे पास आओ, यू विल बी फॉरगिव बाय गॉड.
नो, द आंसर इज व्हाई, बिकॉज इफ सिंस टू फॉरगिव इन हिज लॉ ऑफ जस्टिस वुड बी डिस्ट्रॉयड एंड ऑल मेन वुड बिकम मोस्ट सिंफुल. कल्पना करिए, ईश्वर की बात छोड़ दीजिए, आप एक ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां क्रिमिनल को सजा नहीं मिलता है, सबको माफ कर दिया जाता है. क्या आप चाहेंगे कि ऐसे समाज में आप अच्छे लोग भले लोग रहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी जिंदगी खतरे में पड़ेगा. जिस सोसाइटी में क्रिमिनल्स को माफ किया जाता हो वो सोसाइटी सिविलाइज लोगों के रहने लायक नहीं होता है, जंगल राज होता है. एक सोसाइटी रहने लायक तभी होता है जब वहां बदमाशों को सजा मिलती हो. तो क्या लगता है ईश्वर एक सिविलाइज इंसान से भी गया गुजरा है? मतलब सारे पापियों को बस इतना है कि बस मेरा नाम ले लो माफ. इतना गया गुजरा ईश्वर हमारा और आपका है, फिर होगा क्या? वो सोसाइटी, वो देश, उसमें बचेगा क्या? शुक्र है कि देशों में ऐसा नहीं होता है, सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है, रिलीजन में होता है. इसलिए मोस्ट ऑफ रिलीजियस पीपल आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रो करप्ट. अगर जब मैं कहता हूं मोस्ट ऑफ रिलीजियस, जब आप ब्लाइंड रिलीजियस हो, क्योंकि आपको माफ करना है, अपने ऊपर जुल्म करने वाले को नहीं, उसको तो छोड़ना नहीं है, सांपों से दसवाएंगे मौका मिले तो, समाज के लिए बुरा करने वाले को. पाप को माफ करने का पहला दुष्परिणाम है अच्छे लोग बचेंगे नहीं, मर जाएंगे. नोइंग दैट देयर सिंस विल बी फॉरगिवन, दे विल बिकम फियरलेस एंड विल बी ग्रेटली एनकरेज टू कमिट सिंस. जब हम सबको, आपको पता हो कि अमेरिका में आप कुछ भी करो कोई सजा नहीं मिलती है, फिर कौन किसका केयर करेगा? देखिए ये जो ब्लैक मनी दुनिया भर में क्यों पनपा ज्यादा, जब कुछ देश अपने गवर्नमेंट पॉलिसी बनाया कि अगर आप हमारे बैंक में ब्लैक मनी रखोगे तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपका नाम किसी को बताएंगे नहीं, आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी. वो स्विट्जरलैंड हो, स्वीडन हो, ऑस्ट्रिया हो, कोई भी हो, उसका रिजल्ट क्या हुआ? दुनिया भर में ज्यादातर ब्लैक मनी करने वाले लोग और किया और लेकर के पैसा जमा किया. अगर पूरा सिस्टम सारे देश में ये कानून होता कि किसी भी देश में, किसी भी देश के ब्लैक, कोई भी ब्लैक मनी को अलाउ नहीं है, तो नेचुरली अपने आप कम होते, थोड़े बहुत तक कम होते. खास करके हमारे देश में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है भारत में, जिसको आप टैक्स हेवन कहते हैं. तो जिस देश में, जिस समाज में पाप की, बुराई करने की कोई सजा नहीं है, वो बुरे लोगों का राज, इवन जो अच्छे लोग हैं वो भी बुरे बनेंगे ना. क्यों ऐसा होता है कि आप लोग यहां आकर के तो पूरी सफाई रखते हैं, नैपकिन भी अगर करते हैं तो नीचे नहीं फेंकते, पॉकेट में डालते हैं, जहां मौका मिलता है ट्रैशबिन में जाकर डालते हैं. और वही जब आप भारत में होते हैं, क्योंकि बाजार के बीच बाजार में सूसू कर देते हैं. क्यों, क्या करें, सिस्टम नहीं है. अब हजारों माइल गाड़ी चलाइए, कहीं जाकर के आप अब रिलैक्स नहीं कर सकते, फ्रेश नहीं हो सकते, तो मजबूर हमें क्या करें. तो सिस्टम पापों को माफ करने से नहीं होता है ना, उससे पाप बढ़ता है. इफ द रूलर ऑफ ए कंट्री, जस्ट इमेजिन, were to pardon the criminals, they would be encouraged to commit crimes greater still. वो और ज्यादा पाप करेंगे. For knowing well that the king will not punish them, they will be confident in their minds that they will get the king's pardon by folding their palms and doing other acts of the humility.
तो आपको जब पता है कि आपका जो बॉस है, जो राजा है, जो रूलर है, जो पुलिस ऑफिसर है, जो जस्टिस है, जो जज है, उसके पास जाएंगे, आप हाथ जोड़ेंगे, स्तुति करना शुरू कर देंगे, भक्ति करना शुरू कर देंगे हाथ जोड़ के, तमेव माता च पिता तमेव, शुरू कर दिया जस्टिस को खुश करने, तुम ही हो मां, तुम ही हो बाप, तुम ही हो दोस्त, तुम ही सब, तुम ही तो हो जो कुछ हो, मैं क्या हूं, तुम्हारे चरण में गिरा. जस्टिस ने बोला कोई बात नहीं, जाओ माफ है. आप ऐसे जस्टिस को रखना चाहोगे? पर आप ऐसे गॉड को रखना चाहते हो? ऐसा ईश्वर नहीं है, पर हम सब ऐसे ही ईश्वर, एक काल्पनिक ईश्वर के हो चाहते हैं और इसी तरह के काल्पनिक ईश्वर के पीछे पड़े जो पापों को माफ करता हो. पर सत्य ईश्वर ऐसा नहीं होता है. इवन दोज हु आर नॉट क्रिमिनल्स, बीइंग नो लॉन्गर डिटर्ड बाय एनी फियर ऑफ पनिशमेंट, विल बिगिन टू कमिट क्राइम्स. उसका परिणाम होगा, अगर ईश्वर पापों का फल नहीं देता तो फिर होता क्या कि क्रिमिनल्स तो क्रिमिनल, अच्छे लोग भी क्रिमिनल बनते, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता ना. द सेम होल्स गुड इन द केस ऑफ गॉड. ईश्वर की व्यवस्था में यही है. अगर एक आम समझदार इंसान जानता है कि बुरे को बुरा सजा मिलनी चाहिए, अच्छे को अच्छा फल मिलना चाहिए, तो क्या हमारे आप जिसको हम ईश्वर मानते हैं वो ऐसा नहीं समझ सकता है? Therefore, to reward virtue and punish vice in exact proportion is the work of God, not to forgive sins. और यही ईश्वर की बहुत ही सुंदर व्यवस्था है जिसको आप कर्म सिद्धांत कहते हो. कर्म सिद्धांत क्या है? आप जैसा करोगे आपको उसका फल मिलेगा. ईश्वर का उसमें कोई रोल नहीं है. आप स्वतंत्र हो, आप इंडिपेंडेंट हो. कैसे इंडिपेंडेंट आप कहेंगे? मैं कैसे इंडिपेंडेंट हूं? मेरे तो बचपन में मां बाप का प्रेशर रहता है, बड़े होकर के बॉस का प्रेशर रहता है, पुलिस का प्रेशर रहता है. इंडिपेंडेंट वो आपकी मर्जी. ईश्वर की तरफ से आप छूट हो. क्यों? क्या प्रूफ है कि ईश्वर ने आपको इंडिपेंडेंट बनाया? आपको बुद्धि दी है, आपको हाथ पैर दिया है, आपको पांच पांच इंद्रियां दिया है, समझ देखने समझने के लिए, आपको काम करने के लिए बॉडी शक्ति दिया है, आपको शरीर दिया है, आपको अच्छा बुरा समझने के लिए बुद्धि दिया है. ईश्वर की तरफ से कोई रुकावट नहीं है. अगर कोई आपको कंट्रोल नहीं करता, आपको पूरी इंडिपेंडेंसी दे रखा है, तो फिर उसका रिजल्ट तो आपका ही होगा. जब सोल्जर कमांडर के ऑर्डर पर मारता है तो वो सोल्जर को दोष नहीं होता, वो कमांडर का होता है. पर वही सोल्जर जब बिना यूनिफॉर्म में अपने गांव में किसी को मारता है तो उसका पनिशमेंट उसी को मिलता है, क्योंकि ना ही इज इंडिपेंडेंट. वो कमांडर का ऑर्डर उस पर नहीं चलता, वो गांव में फ्री में छुट्टी में रिटायर होने के बाद है. तो अगर ईश्वर आपको डिपेंडेंट बनाता तो फिर ईश्वर कर्म फल खुद पर लेता, आपको नहीं देता, क्योंकि हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट इसीलिए कि बुद्धि है, शरीर है, मन है, इंद्रियां है, आप जो कुछ कर सकते हो कर सकते हो. ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना कंट्रोल करोगे, कितना खुले अपने आप को खुलोगे, कितना अच्छा करोगे बुरा करोगे. तो जितना हम अच्छा या बुरा करें उसका फल हमारे हिसाब से हमें मिलेगा. मैं अगर उठपटांग ड्राइविंग करूंगा तो उसका खामियाजा मुझे मिलेगा, सही ड्राइविंग करूंगा तो सही फल मुझे मिलेगा. वो सिस्टम है ईश्वर का, उसमें किसी भी पापी को कोई मुक्ति नहीं मिलती है. आप कितने पूजा पाठ करें, कितने ही समर्पित हो जाए, कितने नए नए सो कॉल्ड अवतारी भगवानों के चक्कर में पड़े रहे, तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है. आप अपने आप को उस ख्याल में रख सकते हैं कि मैं तो अमुक बाबा के शरण में जाकर के पाप मुक्त हो गया, पर जो फल भोगना है वो तो भगना होता है, अपने तरीके से भोगना होता है. इसीलिए ईश्वर की सृष्टि में
पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा का फल मिलना निश्चित होता है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय पर, किसी भी व्यक्ति के प्रति ईश्वर को कोई विशेष कृपा नहीं होने वाला होता है। फिर आप दोबारा पूछ सकते हैं, फिर हम ईश्वर की भक्ति क्यों करें? उस पर हमने बहुत चर्चा कर चुके हैं कि ईश्वर की भक्ति करने से क्या फल होता है। नेक्स्ट टाइम हम चर्चा करेंगे, इज द जीव इंडिविजुअल बींग ए फ्री एजेंट और डिपेंडेंट? जैसे अभी हमने थोड़ी बहुत आपको संकेत दिया, नेक्स्ट टाइम इस पर हम चर्चा करेंगे, क्या सचमुच हम स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? तो इसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।